प्यारे विद्यार्थियों, श्री बालाजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाउड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान में इकाई 2 भारत में शासन, जिसके 3 अध्याय पढ़ लिए थे, आज हम 4th अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। 4th अध्याय का नाम है राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में वर्तमान स्वरूप। दूसरी इकाई के 4th अध्याय का नाम है राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन, राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन। तो सबसे पहले इसमें राज्य प्रशासन, राज्य स्तरीय शासन के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य प्रशासन भारत एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो एकात्मक सुविधाओं के साथ संरचना में संघीय है। देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति के परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख देश का प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल के परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख राज्य का मुख्यमंत्री होता है। भारत में जिस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है केंद्र में, उसी भांति राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जिस प्रकार केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, उसी प्रकार की संसदीय शासन प्रणाली राज्यों में भी अपनाई गई है। केंद्र के समान राज्य में भी इस तरह की व्यवस्था प्रचलित है, एक औपचारिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान, या एक औपचारिक कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। जिस प्रकार केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जिस प्रकार केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। उसी प्रकार राज्य में संवैधानिक प्रमुख या नाममात्र का प्रमुख या औपचारिक प्रमुख कहो, चाहे नाममात्र का प्रमुख कहो या संवैधानिक प्रमुख कहो, एक ही बात है। तो राज्यों में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और केंद्र में होता है संवैधानिक या नाममात्र का प्रमुख राष्ट्रपति। राज्यपाल के नाम पर ही शासन का संपूर्ण कार्य संचालित किया जाता है। राज्य में केंद्र की भांति केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पर शासन का संचालन किया जाता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के नाम पर ही शासन का संपूर्ण कार्य संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का हवाला दिया गया है। अनुच्छेद 153 संविधान में ये उल्लेखित करता है कि राज्यपाल का एक पद होगा। राज्यपाल के पद का सृजन अनुच्छेद 153 में किया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154 में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 153 में राज्यपाल के पद का हवाला दिया गया है और 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यह उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत संविधान में यह कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आर्टिकल 155 में उल्लेखित है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, जो हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। विधानसभा में जिसका बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत दल का नेता होता है, उन्हीं को है राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। केंद्र की भांति राज्यपाल के प्रशासनिक ढांचे को विभागों में विभाजित किया गया है। एक सरकारी विभाग अपनी प्रशासनिक संरचना का सबसे बड़ा उपसंभाग होता है। विभाग का प्रमुख राजनीति प्रमुख होता है तथा उसको परामर्श और तकनीकी सलाह के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। वह नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। भारत के संविधान में संघ राज्य शब्द का प्रयोग न करके राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग इस बात की ओर इंगित करता है कि भारत में राज्य प्रशासन श्वेतता के बावजूद राष्ट्रीय धारा के विपरीत नहीं जा सकता। भारत में राज्य प्रशासन श्वेतता स्वतंत्रता के बावजूद भी राष्ट्रीय धारा के विपरीत नहीं जा सकता। ये राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग संविधान में करके ये इस बात की ओर इंगित किया गया है। राज्य प्रशासन को विभिन्न जिलों में विभाजित किया गया है। राज्य प्रशासन को भी अलग अलग जिलों में विभाजित किया गया है। जिला प्रशासन का प्रमुख दायित्व कानून व्यवस्था को बनाए रखना, राजस्व एकत्र करना व विकास कार्यों को क्रियान्वित करना होता है। जिला प्रशासन का प्रमुख दायित्व क्या होता है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना, दूसरा राजस्व एकत्र करना और तीसरा विकास कार्यों को क्रियान्वित करना। व्यवहार में संपूर्ण जन कल्याणकारी नीतियों के निष्पादन का उत्तरदायित्व जिला अध्यक्ष का ही है। व्यवहार में संपूर्ण जन कल्याणकारी जो नीतियां होती है उसका निष्पादन का उत्तरदायित्व जिला अध्यक्ष का ही है। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का भार जिला अध्यक्ष के कंधों पर है। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का भार जिला अध्यक्ष के कंधों पर है। 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों से जिला प्रशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जिला अध्यक्ष अब भारत के लोक विकेंद्रीकृत संरचना का मुख्य अभिकर्ता व समन्वयकर्ता है। स्थानीय स्वशासन व जिला प्रशासन के बीच की कड़ी जिला अध्यक्ष को ही कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन और जिला प्रशासन के बीच की कड़ी जिला अध्यक्ष को ही कहा जाता है। तो राज्यपाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में के तहत होती हैं? वास्तविक प्रधान कौन होता है? नाममात्र प्रधान कौन होता है? इसके बारे में अध्ययन क्या है? अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक राज्य प्रशासन की विशेषताएं। राज्य प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं होती है? राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। पहली विशेषता राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व। दूसरी राज्य प्रशासन की विशेषता है अलग संविधान का अभाव, प्रत्यक्ष संविधान का अभाव। राज्यों में प्रत्यक्ष संविधान नहीं होता है। संपूर्ण राज्यों का भारत में एक ही संविधान है, तो प्रत्यक्ष संविधान का अभाव। तीसरी राज्य प्रशासन की विशेषता है आपातकाल में केंद्र प्रशासन के अधीन। आपातकाल में केंद्र प्रशासन के अधीन राज्य प्रशासन की फोर्थ विशेषता है केंद्र पर निर्भर। राज्य केंद्र पर निर्भर होते हैं। फिफ्थ विशेषता, राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का सूचक होता है। राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का द्योतक या सूचक होता है। सिक्स विशेषता, जन सहभागिता पर आधारित, जन सहभागिता पर आधारित। सेवन विशेषता, सचिवालय राज्य प्रशासन की धुरी होता है। सचिवालय राज्य प्रशासन की धुरी। एट विशेषता, प्रमुख प्रशासकों का अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होकर आना। प्रमुख प्रशासकों का अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होकर आना। नाइन्थ विशेषता, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि। टेंथ विशेषता, स्थानीय प्रशासन राज्य प्रशासन के अधीन। स्थानीय प्रशासन राज्य प्रशासन के अधीन कार्य करता है। तो राज्य प्रशासन की 10 विशेषताएं के बारे में बात की हैं। 10 विशेषताएं एक बार वापस सुन लें। पहली विशेषता, राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व। द्वितीय, पृथक संविधान का अभाव। तृतीय विशेषता, आपातकाल में केंद्र प्रशासन के अधीन। फोर्थ विशेषता, केंद्र पर निर्भर। फिफ्थ, राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का सूचक। सिक्स, जन सहभागिता पर आधारित। सेवन विशेषता, सचिवालय राज्य प्रशासन की धुरी। एट विशेषता, प्रमुख प्रशासकों का अखिल भारतीय सेवाओं से चयनित होकर आना। नाइन्थ विशेषता, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि। और टेंथ विशेषता, स्थानीय प्रशासन राज्य प्रशासन के अधीन। नेक्स्ट टॉपिक, राज्य का वैधानिक प्रधान। राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। वैधानिक प्रधान कहो, चाहे संवैधानिक प्रधान कहो, चाहे नाम मात्र का प्रधान कहो, या औपचारिक प्रधान कहो, एक ही बात है। औपचारिक प्रधान, वैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रधान और नाम मात्र का प्रधान। तो राज्यों का वैधानिक, संवैधानिक, नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। और केंद्र में वैधानिक, नाम मात्र, संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल हमारे संविधान में केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के कारण राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल को बनाया गया है। राज्यपाल नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है, इस कारण इसे नाम मात्र का प्रधान भी कहते हैं। जबकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल करता है, इस कारण मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रधान कहते हैं। तो राज्य का वास्तविक प्रधान है सीएम, चीफ मिनिस्टर, और नाम मात्र का प्रधान है राज्यपाल। केंद्र में नाम मात्र या वैधानिक प्रधान है राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट टॉपिक, राज्यपाल की स्थिति। राज्यपाल की स्थिति राज्य में क्या होती है? प्रारंभ में, शुरुआत के अंदर राज्यपाल की भूमिका औपचारिकता तक ही सीमित थी। शुरू के अंदर हमारे देश में राज्यपाल की भूमिका सिर्फ औपचारिकता तक ही सीमित थी, किंतु बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में यह पद अत्यंत शक्तिशाली और गरिमामय हो गया। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थितियां बदलती गई, उसके अनुसार ये पद भी अत्यंत शक्तिशाली और गरिमा में हो गया। राज्य के पद की भी गरिमा बढ़ी है। अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही। सीताराम जी ने इस पद के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा, राज्यपाल के पद के बारे में टिप्पणी करते हुए राजनीतिज्ञ सीताराम जी ने कहा है, क्या कहा है कि राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करना। राज्यपाल का कार्य क्या है? अतिथियों की इज्जत करना, उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं। राज्यपाल की स्थिति क्या बताई है? राज्यपाल के पद के बारे में पद की टिप्पणी करते हुए सितार मैया जी ने कहा कि राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करने, उनको चाय भोजन और दावत देने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो संघीय सरकार की समरूप राज्य में मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक प्रधान है। इस प्रकार इस उक्ति से ये स्पष्ट होता है, इस सितार मैया जी की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि राज्य 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 का नाम मात्र का प्रधान राज्यपाल होता है, वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक प्रधान राज्य का मुख्यमंत्री होता है। संविधान के आर्टिकल 163 एक, संविधान का अनुच्छेद 163 एक कहता है कि जिन बातों में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को सविवेक्ष्य करें, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163 एक में यह बात कही गई है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यह संविधान का अनुच्छेद 163 एक में यह बात उल्लेखित की गई है। अनुच्छेद 163 एक, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करें, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। और 163 एक में राज्यपाल के स्वविवेक से भी स्वविवेक की भी बात कही गई, वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करें, इस बात का भी उल्लेख अनुच्छेद 163 एक में मिलता है। और स्पष्ट बात तो इसमें यह मिलती है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल द्वारा की गई किसी भी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। तो इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि आर्टिकल 163 एक में ये बात कही गई है कि राज्यपाल अपने कार्यों को सविवेक्ष्य करें, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल की बदलती भूमिका के निम्नलिखित कारण है। राज्यपाल की बदलती हुई भूमिका के क्या क्या कारण हैं वर्तमान में, वो कारण सुने। मुख्यमंत्रियों का कमजोर व्यक्तित्व, मुख्यमंत्रियों का कमजोर व्यक्तित्व। दूसरा कारण है राज्य सरकार के पास सुस्पष्ट बहुमत न होकर साधारण बहुमत होना, राज्य सरकारों के पास पूर्ण बहुमत या सुस्पष्ट बहुमत न होकर के सिर्फ साधारण बहुमत होना। तीसरा कारण है राज्यपाल की बदलती भूमिका का गठबंधन की विखंडनकारी प्रवृत्ति, गठबंधन की विखंडनकारी प्रवृत्ति। राज्यपाल की बदलती भूमिका का फोर्थ कारण है दल बदल की प्रवृत्ति और राजनैतिक अस्थिरता, दल बदल की प्रवृत्ति और राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी राज्यपाल की भूमिका बदली है। और फिफ्थ कारण है क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होना, क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होना। तो राज्यपाल की बदलती भूमिका के पांच कारण बताए गए। पहला मुख्यमंत्रियों का कमजोर व्यक्तित्व, दूसरा राज्य सरकार के पास स्पष्ट बहुमत न होकर साधारण बहुमत होना, तीसरा गठबंधन की विखंडनकारी प्रवृत्ति, चौथा कारण दल बदल की प्रवृत्ति और राजनीतिक अस्थिरता के कारण, और पांचवा कारण है क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होने के कारण राज्यपाल की भूमिका बदली है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्यपाल को मनोनीत करने के कारण, राज्यपाल को मनोनीत करने के क्या कारण है। पहला कारण है संसदीय शासन प्रणाली के कारण, क्योंकि राज्यों के अंदर संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इस कारण राज्यपाल को संसदीय शासन प्रणाली में मनोनीत करने की बात का उल्लेख मिलता है। तो संसदीय शासन प्रणाली के कारण। दूसरा कारण है, राज्यपाल को नाम मात्र कार्यपालिका शक्ति प्रदान की गई ताकि वास्तविक शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री कर सके। तीसरा कारण है, भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए संघ व राज्यों में एकता एवं अखंडता स्थापित करने के लिए। भारत विशाल देश होने, विविधता होना, विभिन्न धर्मों के लोग होने के कारण संघ व राज्यों में एकता एवं अखंडता स्थापित करने के कारण राज्यपाल को मनोनीत करने की बात कही गई। और चौथा कारण है, मनोनीत करने का एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ एवं निर्णय के लिए राज्यपाल को मनोनीत करना आवश्यक है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ एवं निर्णय के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं प्रचलित हैं, वो कौन कौन सी है देखो। पहली परंपरा, सामान्यतया एक राज्य में उसी राज्य के निवासी को राज्यपाल नहीं बनाया जाता। सामान्यतया ये बात, ये परंपराएं संविधान में नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में ये परंपराएं चली आ रही हैं। संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन क्या परंपराएं चली आ रही हैं, भारत स्वतंत्र होने के बाद राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, जिसमें पहली परंपरा है सामान्यतया एक राज्य में उसी राज्य के निवासी को राज्यपाल नहीं बनाया जाता, यानी उसी राज्य का व्यक्ति राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात है, इसमें परंपरा में राज्य मंत्रिमंडल राज्यपाल के नाम पर सहमत हो, यद्यपि इस परंपरा को व्यवहार में कम ही माना जाता है। ये भी बात है, राज्य मंत्रिमंडल राज्यपाल के नाम पर सहमत होना चाहिए, लेकिन इस परंपरा को व्यवहार में कम ही माना जाता है। तीसरी है, वरिष्ठ राजनीतिज्ञों को, नौकरशाहों को व सैन्य अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। ये परंपरा रही है, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ को या नौकरशाहों को व सैन्य अधिकारियों को ही राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता रहा है। और चौथी परंपरा चली आ रही है, प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार ये बात कही गई है कि एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए, एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनने का मौका दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, चार ये परंपराओं के बारे में पढ़ा है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में। नेक्स्ट टॉपिक इसी में, राज्यपाल के संबंध में सरकारी आयोग की सिफारिशें। राज्यपाल के संबंध में सरकारी आयोग की क्या क्या सिफारिशें की गई, सुनो। पहली सिफारिश सरकारी आयोग की, राज्यपाल के रूप में मनोनीत व्यक्ति को उसके कार्यकाल के बाद पुनः लाभ के पद पर नहीं लगाना चाहिए। सरकारी आयोग ने भी यही बात कही है कि राज्यपाल के रूप में मनोनीत व्यक्ति को उसके कार्यकाल के बाद पुनः लाभ के पद पर नहीं लगाना चाहिए, यानी एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात कही है सरकारी आयोग की सिफारिश है कि केंद्र में जिस दल का शासन हो उससे संबंधित व्यक्ति को उस राज्य में राज्यपाल नहीं नियुक्त करना चाहिए। सरकारी आयोग ने दूसरी ये स्पष्ट बात कही है कि केंद्र में जिस दल का शासन है उससे संबंधित व्यक्ति को उस राज्य में राज्यपाल नहीं नियुक्त करना चाहिए जिसमें अन्य राजनीतिक दल की सरकार हो, नहीं करना चाहिए जिसमें अन्य राजनीतिक दल की सरकार हो। तीसरी बात सिफारिश सरकारी आयोग ने की है कि अनुच्छेद 155 आवश्यक संशोधन व परिवर्तन कर राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से सलाह लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अनुच्छेद 155 में आवश्यक संशोधन व परिवर्तन करके, अनुच्छेद 155 तो कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति नहीं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन 155 में आवश्यक संशोधन व परिवर्तन कर राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से सलाह लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए, कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये राज्यपाल के संबंध में सरकारी आयोग की तीन सिफारिशें थी। और चार परंपराओं के बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें है राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, शक्तियों के बारे में कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमने राज्यपाल के समक्ष सरकारी आयोग की सिफारिशों पर तक अध्ययन किया है। इनमें से जो मुख्य प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न नोट करें। पहला प्रश्न लिखें, राज्य प्रशासन की चार विशेषताएं लिखिए। राज्य प्रशासन की चार विशेषताएं लिखिए। राज्य प्रशासन की चार विशेषताएं लिखिए। हमने राज्य प्रशासन की 10 विशेषताओं के बारे में चर्चा की है। उनमें से चार विशेषताएं जो कंफर्म याद होती हैं वही याद करके अच्छी तरीके से लिखें। दूसरा प्रश्न लिखें, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें लिखिए। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें लिखिए। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें लिखिए। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सरकारी आयोग की सिफारिशें, जो हमने 3 सिफारिशों के बारे में अध्ययन किया। अच्छी तरीके से याद करके इसका आंसर लिखें। अब अति लघु उत्तरात्मक छोटा प्रश्न लिखें एक, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान कौन होता है। आंसर लिखें इसका। राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। औपचारिक कहो चाहे वैधानिक प्रधान कहो, चाहे संवैधानिक प्रधान कहो, चाहे नाम मात्र का प्रधान कहो, चारों शब्द का एक ही अर्थ है। किस कैसा भी प्रश्न आ जाए, राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कौन होता है तो भी राज्यपाल, संवैधानिक प्रधान कौन होता है राज्यपाल, वैधानिक प्रधान कौन होता है राज्यपाल, वास्तविक प्रधान की बात आए, वास्तविक प्रधान यानी मुख्यमंत्री का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी जिन सदस्यों व्यक्तियों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष विधि से करती है, प्रत्यक्ष रूप से करती है, वो वास्तविक प्रधान के अंतर्गत आते हैं। और जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने हुए विधायक सांसद के द्वारा जिन व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है वो नाम मात्र के प्रधान में आते हैं। इस प्रकार हमने आज राज्य प्रशासन की विशेषताएं, राज्य का वैधानिक प्रधान, राज्यपाल की स्थिति के बारे में चर्चा की है। कल हम अगली क्लास में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की कलांश यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।